नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 25वें राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर। पंतनगर विश्वविद्यालय में 7 नवंबर को होगा भव्य किसान सम्मेलन। देहरादून जिला पंचायत की पहली बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। चंपावत जिले में आगामी निर्वाचन के मद्देनजर नए मतदाताओं के पंजीकरण कार्य को गति दी जा रही है। और रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में 5 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ। स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलने की उम्मीद। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल, और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में रजत जयंती समारोह के अंतर्गत पहली से 9 नवंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आगामी 7 नवंबर को गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में पंतनगर विश्वविद्यालय सभागार में समीक्षा बैठक हुई। कृषि मंत्री ने अधिकारियों के साथ पंतनगर विश्वविद्यालय स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
हम सबके लिए एक बड़े गौरव की बात है कि आज हमारे राज्य को 9 तारीख को 25 साल हो जाएंगे, और 25 सालों के अंदर इस राज्य ने कई ऊंचाइयों को छुआ है, और इस रजत जयंती वर्ष को हम भव्यता के साथ मनाना चाहते हैं। उसके लिए पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक के कार्यक्रम तय हुए हैं। और क्योंकि ये जो जिला है कृषि के क्षेत्र में अग्रणी जिला है, और समूह की हमारी महिलाएं की संख्या भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो आज हमारा कृषि, ग्राम विकास, उद्यान, मत्स्य, पशुपालन, सहकारिता, इन सुविधाओं को जोड़कर एक बहुत बड़ा किसानों का सम्मेलन, एक बहुत बड़ी सभा यहाँ पर होने जा रही है। उसकी तैयारी की बैठक आज यहाँ पर आहूत की गई है, और मुझे लगता है कि कार्यक्रम बहुत बड़ा होना चाहिए और बहुत बड़ा होगा, और इसका संदेश प्रदेश नहीं पूरे देश में जाएगा।
देहरादून जिला पंचायत की पहली बोर्ड बैठक का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पहली बोर्ड बैठक को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कहा कि सभी जिला पंचायत सदस्यों में काफी उत्साह नजर आया।
पहले बोर्ड की बैठक है, जो हमारे नए निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हैं उनमें उत्साह है। सारे विभाग आ रखे हैं और सब अपने क्षेत्र को लेकर हर विभाग से प्रश्न कर रहे हैं, उनकी समस्याएं बता रहे हैं, और विभाग प्रयास कर रहे हैं, सारे विभाग प्रयास कर रहे हैं कि उन समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए।
बैठक में जिला पंचायत सदस्यों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तरकाशी जिले में आमजन की शिकायतों के समाधान में हो रही देरी और संवेदनशीलता की लगातार उपेक्षा पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी फोन उठाकर सबसे पहले नागरिकों को अंतरिम राहत उपलब्ध कराएं और फिर स्थायी समाधान की दिशा में काम शुरू करें। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश में जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फोन न उठाने के कारण लोगों को छोटी छोटी शिकायतों और समस्याओं के निस्तारण के लिए अनावश्यक रूप से जिला व खंड मुख्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे न केवल सार्वजनिक समय की बर्बादी होती है, बल्कि प्रशासन की छवि और भरोसे पर भी असर पड़ता है। आदेश में कहा गया है कि यह रवैया अधिकारियों की आम जन की समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है, जिसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पाई जाती है या फिर फोन न उठाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उनके विभाग अध्यक्ष या शासन को कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संस्तुति दी जाएगी। नैनीताल जिले के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कानून व्यवस्था को लेकर प्राथमिकता जताते हुए कहा कि महिला सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने जिले के पुलिस प्रमुख के रूप में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया और अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने SSP कार्यालय का निरीक्षण किया और शाखा प्रभारियों से मुलाकात कर टीम भावना के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध नियंत्रण नहीं, बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाना है। उन्होंने कहा कि नशा, साइबर ठगी और यातायात अव्यवस्था जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नैनीताल पुलिस पूरी तत्परता से कार्य करेगी।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
चंपावत जिले में आगामी निर्वाचन के मद्देनजर नए मतदाताओं के पंजीकरण कार्य को गति दी जा रही है। इसी क्रम में लोहाघाट स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी जीवन कॉलोनी ने प्रतिभागियों को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और इसके महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वे युवा जिनकी आयु 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष पूरी हो रही है, वह फॉर्म 6 भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपने क्षेत्र के संबंधित BLO के पास आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रत्येक विद्यालय में निर्वाचक साक्षरता क्लब गठित किए गए हैं। ये क्लब ऐसे पात्र युवाओं की जानकारी BLO को उपलब्ध कराएंगे ताकि कोई भी योग्य मतदाता नामांकन से छूटे नहीं। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप और वोटर्स सर्विस पोर्टल के माध्यम से नाम पंजीकरण, संशोधन और सुधार की प्रक्रिया के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में 5 दिवसीय सहकारिता मेला शुरू हो गया है। मेले में कृषि, उद्यान, मत्स्य और डेयरी सहित कई अन्य विभागों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि सामाजिक एकता और ग्रामीण विकास की आत्मा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूह और अन्य स्थानीय लोगों को अपने उत्पादों के विपणन का मौका मिलता है। सहकारिता के सहायक निबंधक RS राणा ने कहा कि इस मेले के माध्यम से जिले की महिलाएं और युवक समूहों द्वारा तैयार जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प, दुग्ध, पशुपालन और कृषि उत्पाद न केवल ग्रामीणों की आय बढ़ाएंगे बल्कि रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेला न केवल स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होगा बल्कि रुद्रप्रयाग की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करेगा। मेले के पहले दिन सहकारिता विभाग ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत स्वयं सहायता समूह, किसान और पशुपालकों को 37,60,000 रुपये के चेक व माइक्रो ATM वितरित किए। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को कई क्षेत्रों में वस्तु और सेवा कर GST दरों में कटौती के साथ GST बचत उत्सव की शुरुआत हुई थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे परिधान और जूता क्षेत्र में नई GST दरों से नागरिकों को सहायता मिल रही है।
अगली पीढ़ी के GST सुधारों ने परिधान और फुटवेयर क्षेत्र को बड़ी राहत प्रदान की है। इन सुधारों का उद्देश्य युवा निर्माताओं पर बोझ कम करना, उत्पादन को अधिक लागत प्रभावी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्तापूर्ण रेडीमेड कपड़े और फुटवेयर उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हों। नए कर ढांचे के तहत रेडीमेड परिधानों पर 2,500 रुपये तक के लिए GST घटाकर 5% कर दिया गया है। इस सुधार ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू मांग को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार मानव निर्मित धागों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। इसके अलावा 2,500 तक के फुटवेयर पर अब 12% के बजाय केवल 5% GST लग रहा है, जिससे स्टाइलिश फुटवेयर युवा और मध्यम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। इस GST सुधार ने देश की विनिर्माण आधार को महत्वपूर्ण रूप से प्रोत्साहित किया है, उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया है और इन उत्पादों को अधिक किफायती बनाया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 25वें राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों पर। पंतनगर विश्वविद्यालय में 7 नवंबर को होगा भव्य किसान सम्मेलन। देहरादून जिला पंचायत की पहली बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। चंपावत जिले में आगामी निर्वाचन के मद्देनजर नए मतदाताओं के पंजीकरण कार्य को गति दी जा रही है और रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में 5 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ। स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलने की उम्मीद। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।